अच्छा भाई आगे सबक देखिए भाई, मतन देखिए। व इम्मा जदली यतअल्लफु मिनल मशहूराती वल मुसल्लमाती व इम्मा खताबी यतअल्लफु अनिल मकबूलाती वल मजनूनात व इम्मा शेरी यतअल्लफु मिनल मुखयलात व इम्मा सफसती यतअल्लफु मिनल वहमियाती वल मुशब्बहात। गुज़श्ता सबक में मादा कियास के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको बतलाया था कि मादा कियास से मुराद वो तस्दीकात हैं, वो मुकदमात हैं जिनसे कियास मुरक्कब होता है, और ये मुकदमात जितने कवि और मजबूत होंगे कियास भी उसी दर्जे का मजबूत होगा, और इस एतबार से कियास की पांच किस्में बनती हैं भाई, पांच किस्में। सबसे पहली किस्म कियास बुरहानी है, हमने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। इन्होंने आपको बतलाया था कि कियास बुरहानी वो है जो यकीनियात से मुरक्कब हो गई, यकीनियात से। और याद रखना ये आगे चलकर आपको शरा में बतलाएंगे कि ये जो कियास बुरहानी है ये सिर्फ बदीहियात से मुरक्कब नहीं होता बल्कि बदीहियात के साथ साथ ऐसे नजरियात भी इसमें इस्तेमाल होते हैं जिनकी इंतहा बदीहियात पर हो रही हो गई। जिनकी इंतहा किस पर हो, बाज उलमा फरमाते हैं कि जो कियास बुरहानी है ये सिर्फ बदीहियात से मुरक्कब होगा। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो कियास बुरहानी है ये सिर्फ बदीहियात से मुरक्कब होगा, लेकिन आपको शारह बतलाएंगे कि नहीं, कि यकीनियात जो है वो बदीहियात भी हो सकते हैं और ऐसे नजरियात भी हो सकते हैं जिनकी इंतहा बदीहियात पर होती है। क्या माना बदीहियात पर इंतहा होती है, यानी वो नजरियात जो है वो बदीहियात से हासिल हुए हैं। तवज्जो है, मुकदमात कियास के बदीही भी हो सकते हैं और नजरी भी, लेकिन ऐसे नजरी होंगे जो किससे हासिल हुए हैं, बदीहियात से हासिल हुए हैं भाई। बात समझ में आ गई, बदीहियात ने इन नजरियात तक पहुंचा दिया, यानी बदीहियात में गौर व फिक्र करके ये नजरी हासिल हुए हैं भाई। और फिर इन्होंने आपको बतलाया था कि उसूल बदीहियात जो हैं वो छह हैं भाई, अव्वलियात, मुशाहदात, तजरिबियात, हदसियात, मुतवातिरात और फितरियात। अव्वलियात जो हैं वो बदीहियात हैं जिनमें तरफेन और निस्बत का तसव्वुर करते ही जहन फौरन उनको तस्लीम कर लेता है, उनका एतकाद कर लेता है, उन पर यकीन कर लेता है। जैसे अलकुल्लु अअज़मु मिनल जुज़, कुल जुज से बड़ा होता है। देखो इसमें जरा भी गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ही जहन ने कुल का तसव्वुर किया और जुज का तसव्वुर किया और दोनों के दरमियान निस्बत का तसव्वुर किया, आपके जहन ने फौरन तस्लीम कर लिया कि कुल जुज से बड़ा होता है। इसमें किसी दलील का वो मोहताज नहीं हुआ, दिल जहन ने फौरन तस्लीम कर लिया। ये यकीनियात हैं जिनको जहन फौरन तस्लीम कर लेता है, उन पर यकीन कर लेता है, उनको मान लेता है, उनका एतकाद कर लेता है। तो यहां पर भी देखो, तरफेन जो हैं यानी मौजू और महमूल का तसव्वुर किया और बड़े होने के निस्बत का तसव्वुर किया और फिर फौरन जहन ने मान लिया, किसी दलील की हाजत यहां पेश न आई भाई। जबकि बाकी जो पांच किस्में हैं बदीहियात की, उन सब में कोई ना कोई वास्ता और दलील मौजूद होती है। जैसे मसलन अगली किस्म है मुशाहदात भाई, मुशाहदात वो बदीहियात हैं जो हमें हवासे खमसा जाहिरा और बातिना के जरिए हासिल हों। हवासे खमसा जाहिरा के जरिए जो बदीहियात हमें हासिल होते हैं उनको महसूसात और हिस्सियात कहते हैं भाई। महसूसात क्योंकि ये हवासे खमसा जाहिरा से हासिल हुए हैं, और इसी तरह हिस्सियात भी कहते हैं इनको क्योंकि ये हिस के जरिए हासिल हुए हैं भाई। बात समझ में आ गई, ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ कुव्वतें जो अल्लाह ने इंसान को नसीब फरमाई हैं। और जबकि इन मुशाहदात में से वो चीजें जिनका हमें हवासे खमसा बातिना के जरिए पता चला, उनको विजदानियात कहते हैं। और मैंने बतलाया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को हुसूल इल्म की कुव्वतें नसीब फरमाई हैं, हुसूल इल्म के लिए अल्लाह ने इंसान को अकल नसीब फरमाई है, लेकिन अकल सिर्फ कुल्लियात का इदराक करती है, जबकि नफ्स को जुजियात का इदराक भी चाहिए। तो जुजियात के इदराक के लिए अल्लाह ने इसे हवास खमसा जाहिरा और हवास खमसा बातिना नसीब फरमाए। हवास खमसा जाहिरा जो है कुव्वत बासिरा है, कुव्वत सामिया है, कुव्वत शाम्मा है, कुव्वत जायका है और कुव्वत लामिसा है। और इनके जरिए जो इलम हासिल होता है मुख्तलिफ किस्म का, हर एक खास किस्म का इलम हासिल कर रहा है। आंखों के जरिए हम चीजों को देखते हैं, भाई हमें दिखाई देती है, मतलब ये जैद है, ये अमर है, ये बकर है, ये फला चीज है, इसका रंग ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, जो जो कुछ हमें आंखों से दिखाई देता है वह सारी मालूमात फिर यह हिस्से मुश्तरक में पहुंचाती है। कान मुख्तलिफ आवाजें सुनते हैं, इंसानों की आवाज है, जानवरों की आवाज है, मशीनों की आवाज है और चीजों की आवाजें हैं, वो कान वो सारी मालूमात हिस्से मुश्तरक में पहुंचाते हैं। इसी तरह जुबान जो है मुख्तलिफ किस्म के जायकों का इलम जो है हिस्से मुश्तरक में पहुंचाती है। इसी तरह नाक जो है मुख्तलिफ किस्म की जो बू है, अच्छी है बुरी है, वो सारी मालूमात हिस्से मुश्तरक में पहुंचाती है। और कुव्वत लामिसा जिन चीजों को हम छूते हैं या हमारे बदन पर लगती हैं, उनके सारी मालूमात और खबरें वो हिस्से मुश्तरक में पहुंचाती है। और हिस्से मुश्तरक जो है गोया ये इनका एक मरकजी दफ्तर है जहां ये सारी मालूमात आ रही हैं, या यूं कहो जहां इलम से लबालब भरी हुई पांच नहरें आकर इस तालाब में गिरती हैं। और ये तालाब जो है फिर उसको महफूज करता है अपने स्टोर में और गोदाम में, जो कि ख्याल है भाई। तो ये हिस्से मुश्तरक और ये जो ख्याल है ये मुकदमे दिमाग के अंदर हैं भाई, जबकि मुअख्खर दिमाग के अंदर दो कुव्वतें अल्लाह ने रखी हैं, एक कुव्वत हाफिजा है और एक कुव्वत वाहिमा है, जबकि कुव्वत मुतसर्रिफा जो है वो दरमियान वस्त दिमाग के अंदर है भाई। तो ये जो हिस्से मुश्तरक है इसमें चीजों की सूरतें आती हैं। ये जो हवासे खमसा जाहिरा के जरिए जो चीजें हम जानते हैं, जो इलम हमें हासिल होता है, इनको सूरतें कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरत से मुराद वो सूरत नहीं है जिसको आप तस्वीर कहते हैं, बल्कि मुराद पहचान है भाई। ये इन तमाम चीजों की पहचान ये हमारे जहन में महफूज होती है। देखो एक चीज आप खाते हैं, आपको उसका जायका अच्छा लगता है, 10 दिन बाद ही वो चीज सामने आती है या कोई उस चीज का जिक्र करता है तो आपको फौरन उसका जायका जहन में आ जाता है कि वो बड़ी लजीज चीज थी भाई। देखा ये कहां पर महफूज थी, इसकी सूरत ये ख्याल के अंदर महफूज थी। तो ये सारी चीजें जहन में महफूज होती चली जाती हैं। तो ये जुजी सूरतें हैं। क्या हैं? जुजी सूरतें हैं। जैद है, अमर है, बकर है, जो जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब जुजी चीजें हैं। ये सब क्या हैं? जुजी चीजें हैं जो कुछ आप देख रहे हैं। तो ये सारी मालूमात जो हैं हिस्से मुश्तरक महफूज करती चली जाती है ख्याल में। और नफ्स को जुजी मानी का इदराक भी चाहिए, तो जुजी मानी के इदराक के लिए अल्लाह ताला ने इसको कुव्वत वाहमा नसीब फरमाई है। कुव्वत वाहमा मानी जुजिया का इदराक करती है। मसलन एक खौफ कुल्ली है, खौफ, और एक इसी तरह प्यास है, भूख है, सखावत है। इस तरह ये जो मानी है जिनकी सूरत नहीं होती, जिनकी सूरत नहीं होती। देखो सखावत की कोई सूरत है? आपने देखी है? खौफ की कोई सूरत है? भूख की कोई सूरत हो, प्यास की कोई सूरत हो? तो ये मानी है भाई, इनकी कोई सूरतें नहीं। तो इनके इदराक के लिए अल्लाह ने कुव्वत वाहमा नसीब फरमाई है। तो एक है मुतलक सखावत, एक है जैद की या बकर की या अमर की या आपकी सखावत है। इसी तरह एक मुतलक खौफ है और एक आपका खौफ या किसी और का खौफ किसी चीज से भाई। तो ये जो मुतलक खौफ है, मुतलक भूख है, मुतलक प्यास है, ये तो कुल्लियात हैं, इनका इदराक तो अकल करती है। लेकिन ये जुजी खौफ है कि आप किसी सांप को देखकर डर गए या कोई और शख्स किसी दरिंदे को देखकर डर गया। देखो एक तो उसका डरना है, वो आपको आंखों से नजर आ रहा है, लेकिन उससे एक कैफियत जो आपने महसूस की कि इसके दिल में क्या आया है इस वक्त, खौफ आया है। खौफ जो महसूस हुआ वो एक माना था, उसकी जाहिर में कोई सूरत नहीं है भाई। एक आदमी शेर से डर गया तो क्या कोई वो डर की कोई सूरत थी? नहीं नहीं, आपने अलबत्ता महसूस किया कि ये उससे डर गया है, बहुत ज्यादा रंग जर्द पड़ गया है। तो ये जो मानी जुजिया है इनका इदराक जो है ये कुव्वत वाहिमा करती है और फिर इन मानिय जुजिया को वह महफूज करती है कुव्वत हाफिजा में, और कुव्वत हाफिजा का दूसरा नाम कुव्वत जाकिरा है। तो ये जो कुव्वत वाहिमा है और कुव्वत जाकिरा या हाफिजा है, ये दोनों मुअख्खर दिमाग में है, दिमाग के आखिरी हिस्से में, जबकि दरमियान दिमाग में अल्लाह ने कुव्वत रखी है कुव्वत मुतसर्रिफा। भाई कुव्वत मुतसर्रिफा जोड़ तोड़ वाला काम करती है, वो ख्याल से मुख्तलिफ सूरतें लेती है और वो कुव्वत हाफिजा से मुख्तलिफ मानी लेती है और इन मानी और सूरतों को जोड़ तोड़कर नई नई सूरतें पेश करती है। चुनांचे आप भी जब कोई चीज बनाने लगते हैं, आपके जहन में ख्याल आता है इसको इस तरह बनाऊंगा, इस तरह और इस तरह करूंगा। देखा, ये जो आपके जहन में ख्याल आता है ये कौन करती है? कुव्वते मुतसर्रिफा। कुव्वते मुतसर्रिफा आपको बताती है कि देखो, एक है लोहा, इस लोहे की इस तरह की चीज हो, अगर आप उसको इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह टेढ़ा करेंगे तो फला एक सूरत बन जाएगी। भाई तो ये जोड़ तोड़ वाले सारे काम कौन करती है? कुव्वते मुतसर्रिफा, इसका नाम ही मुतसर्रिफा है, ये तसर्रुफात करती है मुख्तलिफ किस्म के। भाई तो ये कुव्वते मुतसर्रिफा है। और इसी तरह हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, गमजदा होते हैं, कभी हमें तकलीफ होती है। तो ये सारे एहसासात, ये सारे जुजी मानी हैं, इनका इदराक भी कुव्वत वाहिमा करती है। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि विजदान एक अलहदा कुव्वत है जो नफ्स की सिफात का इदराक करती है। हमें खुशी होती है, गम होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जो नफ्स की सिफात का इदराक जो कुव्वत करती है उसका नाम विजदान है, विजदान है। लेकिन दीगर उलमा फरमाते हैं कि ये ऐन कुव्वत वाहिमा ही है, इन सारे ये सारे जुजी मानी इनका इदराक कुव्वत वाहिमा करती है। भाई तो कुव्वत वाहिमा इनका इदराक करती है। तो ये जो हवास खमसा बातिना के जरिए जो मुख्तलिफ किस्म के मानी हमें हासिल हुए, इनको विजदानियात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो सूरतें हमें हवास खमसा जाहिरा के जरिए हासिल हुई वो है महसूसात, और जो चीजें हमें हवास खमसा बातिना के जरिए हासिल हुई वो क्या हैं? विजदानियात हैं। भाई वो क्या हैं? और इन दोनों का नाम मुशाहदात है। ये वो चीजें हैं जिनका हम मुशाहदा करते हैं, कोई चीज आंखों से देख रहे हैं, कोई कानों से सुन रहे हैं, कोई हमें खुद महसूस हो रही है, तो ये सारे मुशाहदात हैं। तो इनमें वासिता, ये मुशाहदात में वासिता जो है हवास खमसा जाहिरा या बातिना होते हैं। देखो, आप कोई चीज देखते हैं, देखते ही आपको यकीन आ जाता है या फिर भी उसमें कोई शक रहता है? यकीन आ जाता है। तो ये यकीन, इनके जरिए जो इलम हासिल होता है वो यकीनी होता है। तो ये दूसरी किस्म हुई बदीहियात की। और तीसरी किस्म बदीहियात की तजरीबियात है। भाई वो इलम जो मुख्तलिफ तजर्बों से हमें हासिल होता है। आप भी जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें करते हैं, आपको तजर्बात से इलम हासिल होता चला जाता है। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो मुख्तलिफ काम करता है, लेकिन बाज जगह उसको जब चोट लगती है तो दोबारा वो वैसा नहीं करता। आप उसको 10 दफा समझाएं वो नहीं समझेगा, लेकिन जब उसको 1-2 दफा चोट लगती है, अब उसको तजर्बा हो गया कि इस चीज से मुझे तकलीफ होती है, वो फिर वैसा नहीं करता। भाई तो ये तजर्बियात, इनके जरिए भी कैसा इलम हासिल होता है? यकीनी। मसलन कोई चीज आपको फायदा देने वाली या कोई नुकसान देने वाली है, तो ये सब तजरीबियात के अंदर दाखिल है। चौथी किस्म है बदीहियात की हदसियात। भाई हदसियात जो है इसके अंदर जहन एकदम मबादी से नतीजे तक पहुंचता है। भाई तो इसके मुकाबले में फिक्र है। नजरो फिक्र के अंदर दो हरकतें होती हैं। नजरो फिक्र में मसलन आप एक नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं, एक मतलूब तक पहुंचना चाहते हैं, कयास बनाकर एक नतीजा साबित करना चाहते हैं, तो फिर आपके जहन में दो हरकतें होती हैं। पहले क्या हरकत होगी कि वो फिक्र जाएगी और वो जो चीजें महफूज हैं आपके जहन के अंदर, उनमें से जो मुनासिब बातें होंगी वहां से निकाल कर ले आएगी, और फिर उसके बाद उन दूसरी हरकत फिक्र यह करेगी कि उन दो को आपस में जोड़ देगी, तरतीब दे देगी। जैसे मैंने इसकी मिसाल दी थी कि आपने शुरू में इल्म सर्फ पढ़ा, तो आपसे जब उस्ताद कोई सीगा पूछता था तो आप गौर और फिक्र में लग जाते थे, फिक्र करने लगते थे, वो आपका जहन चला गया। जो जो गर्दाने आपके जहन में महफूज हैं, जो सीगे याद हैं, उनमें चक्कर लगा रहे हैं कि कौन सा वाला हो सकता है, एक एक की तरफ जहन बड़ी रफ्तार से जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी महारत हो गई, अब जैसे ही उस्ताद की जुबान से कोई सीगा निकलता है, उसी लम्हे जहन आपके सामने लाकर पेश कर देता है कि यह फला सीगा है। अब भी वही दो हरकतें हुई, जहन गया कहां पर, फिक्र गई वो जो जहन में सीगे महफूज थे उनके अंदर, और उनमें एक सारों में तेजी से गौर किया और उसमें से जो जो मतलूबा सीगा था वो निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया कि ये फला सीगा है भाई। देखा तो एक लम्हा भी इसमें नहीं लगता भाई, इधर उस्ताद की जुबान से सीगा निकलता है, इधर फौरन आप बता देते हैं कि यह फला सीगा है, हालांकि अब भी वही हरकतें हुई हैं लेकिन आनन फानन हुई है भाई, मबादी से नतीजे तक आप फौरन पहुंच गए, जरा भी वक्त नहीं लगा। या इसकी दूसरी मिसाल, आप इल्म नह पढ़ते हैं, आपके कहां इबारत में रफा पढ़ना है, कहां नसब, कहां जर, शुरू में आपको बड़ा गौर करना पड़ता था, बड़ी देर सोचते रहते थे, फिर जाकर कुछ अंदाजा होता था, कभी ठीक अंदाजा होता कभी गलत होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी महारत इसमें हासिल हो गई कि अब आप इबारत पढ़ रहे होते हैं, आप इबारत पढ़ रहे होते हैं, देखो आपने उस पर कोई जेर जबर नहीं लगाए, लेकिन आप जूं जूं पढ़ते जा रहे हैं उतनी ही रफ्तार से जहन आपको बताता जा रहा है यहां रफा पढ़ना, यहां नसब, यहां रफा, यहां नसब, और इतनी रफ्तार की इंसान हैरान रह जाता है भाई। तो यह है हदस भाई, और यह कभी कभार तो अल्लाह की तरफ से खास आता होती है, किसी को अल्लाह ऐसी जहानत नसीब फरमा देते हैं, और बसा औकात यह शौक और मेहनत के जरिए इंसान हासिल कर लेता है। यह है हदस भाई। तो हदस के जरिए जो इलम हासिल होगा वह भी बदी ही है भाई। क्या है? बदी ही है। कहना तो इसको नजर ही चाहिए, क्योंकि दलील यहां पर भी है, आपके सामने लिखा हुआ है जराबा जैदुन, आप इसको जराबा जैदुन पढ़ेंगे, जैदा नहीं पढ़ेंगे, तो जैदुन पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जहन में ये पहले ये बात आती है कि ये फाइल है, और फिर दूसरी बात आती है कि फाइल क्या होता है, मरफू, लिहाजा इस पर भी क्या पढ़ो, रफा पढ़ो, तो ये सारी दलील जहन में आती है, इसको नजर ही कहना चाहिए, लेकिन ये इतनी रफ्तार से होता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो यहां पर यूं समझो गोया ये जो दलील है वो भी ला दलील के दर्जे में है, तो इसलिए इसको बदीहियात में शुमार करते हैं। और पांचवी किस्म है बदीहियात की मुतवातिरात। मुतवातिरात वो बातें जो आपको लोगों के लिए पहुंची हैं भाई, लेकिन वो लोग इत्तिला देने वाले इतने ज्यादा हैं कि अकल उनके इज्तिमा अल कजिब को महाल समझती है। कितने लोग झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने लोग खबर दे रहे हैं, मालूम हुआ बात ऐसी ही है। और यहां आपको एक और अजीम फायदा हासिल हो गया, मालूम हुआ कि बुरहान के अंदर जो मुकदमात होंगे वो सिर्फ अकली नहीं हो सकते बल्कि नकली भी हो सकते हैं, जो रिवायत के जरिए, नकल के जरिए, सिमा के जरिए आपको दलाइल हासिल हुए, जो बातें हासिल हुई हैं भाई। और आखिरी किस्म है बदहियात की, उनको फितरियात कहते हैं, उनको फितरियात कहते हैं। फितरियात के अंदर भी वास्ता होता है, एक चीज आपके जहन में आती है, मौजू का भी तसव्वुर किया, महमूल का भी तसव्वुर किया, निस्बत का भी तसव्वुर किया, लेकिन इससे भी जहन को यकीन नहीं हुआ, हां उसके साथ एक दलील भी आ जाती है और फिर जहन उसको मान लेता है। तो अव्वलियात और फितरियात में क्या फर्क है कि अव्वलियात में वास्ते की तरफ जहन नहीं जाता, दलील की तरफ जहन नहीं जाता, फौरन जहन उसको कबूल कर लेता है, और जबकि फितरियात में जहन दलील की तरफ जाता है, लेकिन वो दलील इस कजिए से जुदा नहीं होती। जिस लम्हे में ये कजिया आपके जहन में आता है कि मसलन के छह जो है वो जुफ्त है, जिस लम्हे में ये कजिया आपके जहन में आता है, ये बात आपके जहन में आती है, साथ ही उसकी दलील भी आ जाती है कि छह के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, और जिस चीज के दो बराबर हिस्से हो वो क्या होती है, जुफ्त, लिहाजा छह भी क्या है, जुफ्त, और आपका जहन उसको मान लेता है, यकीन कर लेता है। तो यहां दलील साथ आ जाती है, तो इसीलिए इनको कजाया कियासातुहा माहा, ये ऐसे कजिए हैं कि जिनकी कियास यानी जिनके दलाइल उनके साथ ही होते हैं। कियास का क्या माना, दलील भाई, दलील, जिनकी दलील उनके साथ ही होती है भाई। तो ये छह किस्में हैं बदीहियात की। तो ये छह, ये जो बदीहियात हैं ये इस्तेमाल होते हैं दलील बुरहान के अंदर। ये उसूल यकीनियात जो है, ये उसूल बदीहियात जो है, ये किसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, बुरहान के अंदर। तो बुरहान को, बुरहान का माना है दलील, तो चूंकि इस बुरहान के तमाम मुकदमात यकीनी हैं और इससे जो नतीजा आएगा वो भी बड़ा ही यकीनी होगा, इसलिए इसको दलील कहते हैं। यानी दलील कहलाने की तो यही हकदार है, बाकी दलील कहलाने के हकदार नहीं। इसके जरिए यकीन का फायदा हासिल होता है, जबकि बाकी दलाइल के जरिए यकीन का फायदा हासिल नहीं होता। भाई तो कयास बुरहानी जो है इसके दोनों मुकदमात यकीनी होने चाहिए और इसका नतीजा भी क्या होगा, यकीनी होगा। भाई उसके बाद फिर इन्होंने आपको बतलाया था कि जो बुरहान है ये दो किस्म पर है, एक बुरहान लिम्मी और एक बुरहान इन्नी। बुरहान लिम्मी वो है जिसमें इल्लत के जरिए इस्तेदलाल किया जाए मालूल पर, इल्लत के जरिए मालूल को साबित किया जाए, जैसे सूरज का निकलना इल्लत है और दिन का होना मालूल है। तो अब आप सूरज के जरिए इस्तेदलाल करें दिन पर कि सूरज निकला हुआ है, मालूम हुआ दिन भी मौजूद है। तो ये देखो इल्लत के जरिए आपने दिन को यानी मालूल को साबित किया, तो इसको दलीले लिम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? दलीले लिम्मी कहते हैं। और दूसरी इसके मुकाबले में दलीले इन्नी है जिसमें मालूल के जरिए इल्लत पर इस्तेदलाल किया जाता है। मैंने आपको बतलाया था कि ये जो हद औसत है ये कियास के अंदर बुनियादी चीज है। हद औसत असगर और अकबर को मिलाती है। असगर तो सुगरा में था, अकबर तो कुबरा में था, दोनों अलग अलग मुकदमात में हैं। इनको जोड़ा किसने, मिलाया किसने? हद औसत ने। हद औसत दोनों के साथ जुड़ी और उसने फिर लाकर दोनों को आपस में नतीजे में मिला दिया। तो ये जो हद औसत होती है इसको वासिता फिल इस बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वासिता। ये वासिता बनी इस बात के लिए जो नतीजा आया, या इसको वासिता फिल तस्दीक कहते हैं कि ये वासिता बना, ये जो तस्दीक आई यानी नतीजे की सूरत में। भाई तो हद औसत सबसे कीमती चीज है भाई, और ये हद औसत जो है अगर ये इल्लत हो, हद औसत क्या हो? इल्लत हो और नतीजे में फिर मालूल आए तो इसको दलीले लिम्मी कहते हैं। और अगर ये जो हद औसत है ये मालूल हो और नतीजे में फिर इल्लत आए तो इसको दलीले इन्नी कहते हैं। भाई मसलन मैं आपसे कहता हूं जैद की नबज तेज चल रही है और जिसकी नबज तेज चलती है उसे बुखार होता है, तो क्या साबित हुआ कि जैद को बुखार है। तवज्जो है, जैद की नबज तेज चल रही है और जिसकी नबज तेज चलती है उसे बुखार होता है। नतीजा क्या निकला कि जैद को बुखार है। अब मुझे बताइए वाकये के अंदर बुखार से नबज तेज होती है या नबज के तेज होने से बुखार हो जाता है? बुखार से नबज तेज होती है भाई, जिसको बुखार होगा उसकी नबज तेज हो जाएगी। तो यहां पर किसके जरिए इस्तेदलाल किया? जैद की नबज तेज चल रही है और जिसकी नबज तेज चलती है उसे बुखार होता है। नतीजा क्या आया? जैद को बुखार है। अब मुझे बताइए इस्तेदलाल इल्लत के जरिए किया या मालूल के जरिए? मालूल के जरिए इस्तेदलाल किया। किस पर? इल्लत पर। तो यह कौन सी दलील है? दलीले इन्नी है। इसी को जरा पलट दें, जैद को बुखार है और जिसको बुखार होता है उसकी नबज तेज चलती है। नतीजा क्या निकला? जैद की नबज तेज चल रही है। यह देखो किस बुखार के जरिए इस्तेदलाल हुआ, किस पर? नबज के तेज होने पर। तो यह कौन सी दलील हुई? दलील लिम्मी। तो लिम्मी याद रखो यह लिम्मुन से है, लिम्मुन, और लिम्मुन अखज किया गया है लिमा से। लिमा के जरिए सवाल किया जाता है कि यह चीज ऐसी क्यों है, यानी इल्लत के बारे में। आपसे कोई पूछता है जैद की नबज तेज क्यों चल रही है, इस वक्त दिन क्यों है, तो देखो ये लिमा के जरिए इल्लत के बारे में सवाल किया जाता है। भाई तो ये जो कियास था, तवज्जो है, कियास के अंदर ये जो हद औसत है इसको गोया इल्लत करार दिया गया और इसके जरिए आगे नतीजे तक हम पहुंचे। दलीले लिम्मी और इन्नी को जरा एक तरफ रख दें। ये जो कियास होता है इसमें जो हद औसत होती है ये इल्लत होती है नतीजे तक पहुंचाने की। तवज्जो है, ये जो हद औसत है ये इल्लत है, ये सबब है, ये हमें कहां तक पहुंचाती है? नतीजे तक। तो मालूम हुआ ये जहन के अंदर इल्लत है, जहन के अंदर ये इल्लत। तो अगर जहन में इल्लत होने के साथ साथ ये वाकये में भी इल्लत हो उस निस्बत की, तो इसको दलीले लिम्मी कहते हैं। और अगर ये जहन में तो इल्लत है कियास के अंदर जो हद औसत है वो जहन में तो इल्लत है लेकिन वाकई में ये उस निस्बत की इल्लत नहीं है तो इसको दलील इन्नी कहेंगे। तवज्जो है, मसलन फिर सुने, मैं आपसे कहता हूं इस वक्त दिन है और जब दिन होता है तो सूरज निकला होता है, नतीजा क्या निकला कि सूरज निकला हुआ है। तो हद औसत क्या है? दिन। हद औसत क्या है? दिन। तो गोया जहन के अंदर ये जो दिन है ये इल्लत है, ये हमें कहां तक पहुंचा रही है? सूरज के निकलने तक। और क्या वाकई में भी दिन की वजह से सूरज निकलता है या सूरज की वजह से दिन निकलता है? सूरज की वजह से। तो जहन में तो दिन इल्लत है किसके लिए? सूरज के लिए। नतीजा हमने क्या निकाला? इस वक्त दिन है और जिस वक्त दिन हो उस वक्त सूरज निकला होता है, नतीजा क्या? इस वक्त सूरज निकला हुआ है। तो देखो नतीजे तक हमें पहुंचाया किसने? इस हद औसत ने जो कि दिन है। तो गोया जहन में दिन इल्लत है और सूरज का निकलना उसका मालूल है। अगर वाकई में भी ऐसा हो, दिन जो है वो इल्लत हो किसके लिए? सूरज के निकलने के लिए, तो इसको दलीले लिम्मी कहेंगे। और अगर वाकई में ऐसा ना हो तो इसको दलीले इन्नी कहेंगे। मुझे बताइए क्या वाकई के अंदर भी दिन इल्लत है सूरज के लिए?
नहीं
है। मालूम हो ये दलीले इन्नी है। और अगर जहन में एक चीज जो इल्लत है वाकई में भी वो उस निस्बत के लिए इल्लत हो तो उसको दलीले लिम्मी कहते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि इस वक्त सूरज निकला हुआ है और जब भी सूरज निकला होता है दिन होता है, नतीजा क्या आया कि इस वक्त दिन है। देखो सूरज के निकलने के जरिए इस्तेदलाल किया किस पर? दिन के होने पर। तो गोया जहन में सूरज का निकलना इल्लत है किसके लिए? दिन के लिए। और वाकई में भी ऐसा ही है तो इसको क्या कहेंगे? दलीले लिम्मी कहेंगे। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ये जो कियास इस्तिस्नाई है इसके अंदर जो दूसरा मुकदमा आता है, दूसरा मैंने आपको बताया था कियास इस्तिस्नाई में पहले मुकदमे को कुबरा कहते हैं और दूसरा जो छोटा मुकदमा आता है वो है सुगरा। कियास इस्तिस्नाई में पहला मुकदमा जुमला शर्तिया होता है और दूसरा कजिया हमलिया होता है। तो ये जो कजिया हमलिया है ये है मुकदमा इस्तिस्नाइया और ये हद औसत के दर्जे में है। ये किसके दर्जे में है? हद औसत के दर्जे में है। लिहाजा अगर इस मुकदमा इस्तिस्नाइया के अंदर इल्लत का जिक्र हो जो वाकई में इल्लत है तो फिर इसको क्या कहेंगे? दलीले लिम्मी। और अगर इसके अंदर मालूल का जिक्र हो तो इसको क्या कहेंगे? दलीले इन्नी कहेंगे। तो मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो दलील लिम्मी और इन्नी को लिम्मी और इन्नी क्यों कहते हैं? लिम्मी जो है ये लिम्मुन से है और लिम्मुन बमाने इल्लत के है। लिम्मुन इसको अखज किया गया है लिमा से और लिमा जो है वो इल्लत के बारे में सवाल किया जाता है लिमा के जरिए कि ये चीज ऐसी क्यों है, लिमा हाजा, ऐसा क्यों है भाई। तो लिमा के जरिए इल्लत के बारे में सवाल किया जाता है। तो वो दलील जो एक चीज के इल्लत होने पर दलालत करे वाकये के अंदर उसको दलीले लिम्मी कहते हैं। दलीले लिम्मी के अंदर हद औसत वो इल्लत होती है तो जहन में भी वो इल्लत और वाकये में भी इल्लत। तो ये दलील एक चीज के इल्लत होने पर दलालत कर रही है। ये दलील हमें बतला रही है कि सूरज के निकलने की वजह से दिन होता है, सूरज इल्लत है और दिन का निकलना मालूल है। इसको क्या कहते हैं? दलीले लिम्मी भाई, क्योंकि ये इल्लत पर दलालत कर रही है। और दूसरी दलील जो है उसको दलीले इन्नी कहते हैं। इन नुन जो है ये वही हर्फ मुशब्बा बिलफेल है इन्ना, और इन्ना जैदन काइमुन क्या माना? यकीनन जैद खड़ा है, बेशक जैद खड़ा है। तो ये जो इन्ना है ये वजूद और सबूत पर दलालत करता है। तो ये जो दलीले इन्नी है ये भी सिर्फ जहन में एक चीज के सबूत पर दलालत करती है, उसके इल्लत होने पर दलालत नहीं करती। मसलन दिन है तो सूरज निकला हुआ है, तो देखो जहन में दिन जो है वो इल्लत है और सूरज का निकलना मालूल है, वाकई में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको दलीले इन्नी कहते हैं। ये एक चीज के सबूत फिर जहन पर दलालत कर रही है, यानी जहन में सिर्फ इल्लत होने पर दलालत कर रही है, वाकई में इल्लत होने पर दलालत। इसको दलील इन्नी कहते हैं, ये जहन में एक चीज के सबूत पर दलालत करती है कि ये चीज जहन में है, यानी जहन में उसके लिए सबब और इल्लत है, वाकई में सबब और इल्लत नहीं है। अब याद रखना, ये जो पहली किस्म आपने पढ़ी कियास की, ये कियास बुरहानी है। याद रखो, ये मादे के एतबार से कियास की पांच किस्में बनती हैं जिनको सनाआत खमसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सनाआत खमसा। सनाआत जमा है सनाअत की, और सनाअत जो है फन को कहते हैं। तो ये पांच किस्म के कियास हैं, गोया पांच किस्म के फुनून हैं, पांच फन हैं भाई। तो इनको क्या कहते हैं? सनाआत खमसा, सनाआत खमसा कहते हैं। इनमें से पहली किस्म कियास बुरहानी है, वो आपने पढ़ ली। दूसरी किस्म कियास जदली है भाई, कियास जदली है। तीसरी किस्म जो है वो कियास खताबी है। चौथी किस्म कियास शेरी है, और पांचवी किस्म कियास सफसती है। कितनी किस्में हैं? पांच किस्में। नंबर एक कियास बुरहानी, नंबर दो कियास जदली, नंबर तीन कियास खताबी, खा के फतहा के साथ भाई, कियास खताबी, नंबर चार कियास शेरी, और नंबर पांच कियास सफसती है भाई। तो कियास बुरहानी के बारे में आपने पढ़ लिया, आगे आज हम पढ़ेंगे बकिया अकसाम के बारे में, बकिया अकसाम के बारे में। याद रखो, कियास दूसरी किस्म है कियास जदली भाई, कियास जदली। और कियास जदली, जदल, जदल का माना झगड़ना, बहस करना, मुबाहसा करना। तो कियास जदली ये चूंकि ज्यादातर मुनाजरों में इस्तेमाल होता है, कदीम जमाने में उलमा के दरमियान बकसरत मुनाजरे होते थे हक तक पहुंचने के लिए, हक तक पहुंचने के लिए बकसरत मुनाजरे होते थे, तो जिस कियास की मदद से मुनाजरे के अंदर मुकाबला किया जाता था उसको कियास जदली कहते हैं भाई, कियास जदली। जदल का क्या माना है? बहस मुबाहसा करना और झगड़ना। तो यह भी बहस मुबाहसे में चूंकि काम देता है, इसलिए इसका नाम कियास जदली रखा। दाल पर फतहा है भाई, जदली। और यह याद रखो, मशहूर और मुसल्लमा बातों से मुरक्कब होता है। कियास जदली के अंदर मशहूर बातें जिक्र होती हैं या मुसल्लमा यानी तस्लीम शुदा बातें, तस्लीम शुदा। याद रखो, कुछ बातें लोगों के अंदर मशहूर होती हैं, बाज़ औकात तमाम लोगों में बातें मशहूर होती हैं, बाज़ औकात खास जमात या खास लोगों के अंदर कुछ बातें मशहूर होती हैं। मसलन, इंसाफ अच्छी चीज है, सारी दुनिया के लोगों में यह बात मशहूर है। जुल्म बुरी चीज है, तमाम दुनिया के लोगों में यह मशहूर है। इसी तरह सच बोलना अच्छी चीज है, झूठ बुरी चीज है। देखो, ये सारी दुनिया के लोगों में ये बातें मशहूर हैं, इनको मशहूरात कहते हैं। और कुछ बातें होती हैं खास इलाके वालों में या खास उलूम वाले या खास फुनून वालों में मशहूर होती हैं। जैसे हिंदुस्तान वाले वो कहते हैं जानवर को जिबा करना बुरा है, हिंदुस्तान के हिंदू क्या कहते हैं? जानवरों को जिबा करना बुरा है भाई, बुरा है। तो ये देखो, ये उनके अंदर मशहूर है, बाकी दुनिया के लोग इसको बुरा नहीं समझते, वो जानवर जिबा भी करते हैं, खाते भी हैं। इसी तरह बाज बातें कुछ फुनून, मुख्तलिफ उलूम और फुनून वालों में मशहूर होती हैं। जैसे नहवी, नहवियों के यहां मशहूर है अल्फाइलो मरफून, वल मफूलो मनसूबन, वल मुजाफ इलेही मजरूरन। ये बातें नहवियों के यहां मशहूर हैं। इसी तरह उलमाए उसूल फिका वालों में मशहूर है अल अमरु लिल वजूब, अमर किस लिए आता है? वजूब के लिए आता है। तो ये मुख्तलिफ बातें मशहूर होती हैं, बाज औकात तमाम लोगों में मशहूर होती हैं, बाज औकात खास जमात में या खास इलम वालों में मशहूर होती हैं। और ये सच्ची भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं। जैसे अदल, इंसाफ अच्छी चीज है, ये ठीक बात है। इसी तरह सच अच्छा है, झूठ बुरा है, जुल्म बुरा है, ये सब क्या है? ये मशहूर भी हैं और सच्ची बातें हैं। और ये मशहूर है कि हैवानात को जिबा नहीं करना चाहिए, इनको जिबा करना बुरा है, ये भी मशहूर है, लेकिन ये सच्ची नहीं है भाई, क्योंकि ये तमाम चीजें अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा की हैं भाई। इंसान के लिए ये हैवानात पैदा फरमाए ताकि वो इनको जिबा करे और इनका गोश्त भी खाए भाई। हां जुल्म ना करे भाई, जुल्म ना करे भाई, जुल्म करता है तो फिर ये बुरा है भाई, जुल्म ना करे। और चुनांचे इसकी निशानियां भी दे दी। बाज लोग भाई सब्जी खोर होते हैं, वो सारी उम्र सब्जियां खाते हैं, गोश्त को हाथ भी नहीं लगाते। वो यही कहते हैं कि ये हैवानात को जिबा करना अच्छा नहीं है, ये तो जुल्म कर रहे हैं आप, उनको जिबा कर रहे हैं। देखा, अकल इंसान की कामिल रहनुमाई नहीं कर सकती जबकि जब तक शरीयत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई न हो गई। हमारी अकल इतनी नाकिस है, बेशक बास चीजों में इतनी गहराई तक हम चले जाते हैं लेकिन गौर करें तो अकल में इतने नुकसानात भी नजर आते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। चुनांचे साइंसदानों ने तजर्बात किए भाई, बास खुले मैदान के अंदर इंसानों को ले गए, उसकी आंखों पर बिल्कुल पट्टी बांध दी, उसे कुछ दिखाई ना दे, पूरी तसल्ली कर ली, कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखें खोले भी तो इसे कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसी पट्टी बांध दी। और फिर उसको एक जगह मैदान में खड़ा किया और कहा कि वो सीधा आपने जाना है और वो सामने हम आपका इंतजार करेंगे, आप पहुंचेंगे, हम बता देंगे कि आप पहुंच गए हैं, बिल्कुल सीधा जाना है, सीधा खड़ा कर दिया उसको और उसको कहा आप चलो। अब वो चलने लग पड़ा, अब वो सीधा जाने के बजाय वो गोल चक्कर लगा रहा है उस मैदान के अंदर, क्या कर रहा है, गोल चक्कर लगा रहा है, वो सारी वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो भाई ये अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल सीधा चल रहा है लेकिन देखो ये चक्कर लगा रहा है दायरे की सूरत में। तो अकल किसी चीज में रहनुमाई, कामिल रहनुमाई कर ही नहीं सकती भाई। अकल के साथ शरीयत की रहनुमाई होगी तो फिर ही इंसान सही रास्ते पर चल सकता है। तो कुछ लोग सारी उम्र सब्जी खाते हैं कि नहीं भाई ये हैवानात को जिबा करना ये जुल्म है, लेकिन शरीयत ने बतलाया कि नहीं, ये सब चीजें अल्लाह ने आपके लिए पैदा की हैं, आप इनको इस्तेमाल करें लेकिन शर्त यह है जुल्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जुल्म है, आप बिला वजह ही हैवानात को मारते चले जा रहे हैं, जरूरत से जायद जाया उन बिचारों को खत्म कर रहे हैं या मार रहे हैं तो जुल्म के तरीके से उनको मार रहे हैं। नहीं नहीं, जिबा करना है जल्दी से जिबा कर लो और जो जरूरत है उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल कर लो भाई, ये नहीं कि आप बिला वजह ही कत्ल करते चले जा रहे हैं सिर्फ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए भाई। बाज लोग शिकार खेलने के लिए जाते हैं, इतने हैवानात बिचारों को मार कर आ जाते हैं, ये जुल्म है भाई। आपको जरूरत जितनी है आप जरूर शिकार करें, शरीयत ने इजाजत दी है भाई। तो बाज लोग हमेशा सब्जी ही खाते हैं लेकिन अल्लाह ने निशानियां दे दी भाई। जैसे देखो ये जो सब्जी खोर हैवानात होते हैं इनके सारे दांत हमवार होते हैं क्योंकि इनको सब्जी और घास खाने के लिए हमवार दांतों की जरूरत है। और ये जो गोश्त खोर दरिंदे वगैरह हैं इनके सारे दांत बड़े नोकदार होते हैं। अगर आप गौर करें बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, चीता है, इनके सारे दांत बड़े नोकदार होते हैं। और इंसान को अल्लाह ने दोनों तरह के दांत दिए, इसमें इशारा है यह सब्जी भी खा सकता है और गोश्त भी खा सकता है। ये अगर आप अपने सामने के चार दांत ऊपर वाले और नीचे वाले इन चार दांतों को छोड़कर पांचवां और छठा दांत इनके साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे देखें ये जरा नोकदार हैं भाई, जरा नोकदार हैं, इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि इंसान गोश्त भी खा सकता है भाई। तो ये कुछ बातें लोगों में मशहूर हो जाती हैं तो इन बातों का सच्चा होना जरूरी नहीं, सच्ची भी हो सकती हैं। जैसे सब में मशहूर है सच अच्छी चीज है और झूठ बुरी चीज है, इंसाफ अच्छी चीज है, जुल्म बुरी चीज है, ये सच्ची बातें हैं। लेकिन ये भी मशहूर है बाज में कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, जानवर को जिबा करना बुरा है, ये सच्ची बातें नहीं हैं भाई। तो ये जो मशहूर बातें होती हैं, मशहूरात, ये सच्ची भी हो सकती हैं और झूठी भी हो सकती हैं। और दूसरा ये मुरक्कब होता है मुसल्लमात से, मुसल्लमा बातें, तस्लीम शुदा, यानी जिनको फरीक मुखालिफ तस्लीम करता है। आपका मुनाजरा चल रहा है, आप उसको दलाइल देते हैं, अब अगर उसके सामने ऐसी बात जिक्र करेंगे जिसको वो तस्लीम करता है तो उसके जरिए आप अपनी बात को साबित कर देंगे और उस पर गालिब आ जाएंगे और मुनाजरे को जीत लेंगे। बेशक वो बात गलत हो लेकिन वो क्या कर रहा है, इन बातों को मुखालिफ जब एक बात को तस्लीम करता है तो आप दलील देकर क्या कर देंगे, अपने दावा को साबित कर देंगे भाई। तो मुसल्लमा बात जो फरीक मुखालिफ के नजदीक तस्लीम शुदा हो, आपने अपना दावा साबित करना है ना, चाहे सच्ची बात है चाहे झूठी है, लेकिन फरीक मुखालिफ जो है आपका मुकाबिल मुनाजरे के अंदर वो एक बात को तस्लीम करता है तो आप वही दलील बनाएं और अब वो इनकार नहीं कर सकेगा क्योंकि वो इस बात को तस्लीम करता है। तो ये जो कयास जदली होता है ये मशहूरात और मुसल्लमात से मुरक्कब होता है। इसमें किस किस्म के कजिए इस्तेमाल होते हैं जो लोगों में मशहूर हों, चाहे पूरे दुनिया वालों में, चाहे खास जमात या खास इलाके के लोगों में, या इसी तरह जो मुसल्लमा बातें जिनको यह फरीक मुखालिफ कबूल करता है, तस्लीम करता है, ऐसे मुकदमात को आप जिक्र करेंगे कयास जदली के अंदर। तो कयास जदली का फायदा यह है कि इसके जरिए आप अपनी बात साबित कर देंगे और अगर मुखालिफ कोई बात कर रहा है तो आप उस पर एतराज करके उसकी बात को रद्द कर सकते हैं, तो अपनी राय की हिफाजत कर सकते हैं और मुखालिफ पर एतराज कर सकते हैं। यह फायदा है कयास जदली का। तो कयास की दूसरी किस्म क्या है? कयास जदली। और यह किससे मुरक्कब होता है? मशहूरात और मुसल्लमात से। देखिए भाई किताब पर मतन देखिए, व इम्मा जदली यता अल्लफ मिनल मशहूरात वल मुसल्लमाती व इम्मा जदली, या कयास जो है वो जदली होगा, यता अल्लफ मिनल मशहूरात वल मुसल्लमाती, जो मुरक्कब होता है मशहूर और मुसल्लमा बातों से। ये मशहूरात और मुसल्लमात सच्ची बातें भी हो सकती हैं और झूठी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन यहां मकसद सिर्फ फरीक मुखालिफ पर इंसान गालिब आ जाए भाई। तो चूंकि मसाइल में बाहमी इख्तिलाफ के मौके पर इस कयास से काम लिया जाता है, बहस मुबहसे के मौके पर इस कयास से काम लिया जाता है, इसलिए इसको कयास जदली कहते हैं। आगे देखिए, वह इम्मा खताबियों यता अल्लफ मिनल मकबूलात वल मजनूनात। तीसरी किस्म आ गई कयास खताबी, यह खा के फतहा के साथ है भाई, खा के फतहा के साथ। और चूंकि ये खिताब वगैरह में, वाज़ो नसीहत में इनसे काम लिया जाता है, इसलिए इसको कयास खताबी कहते हैं। ये वाइज लोग, ये तब मुकर्ररीन हजरात, और मुकर्ररीन हजरात चूंकि इसके जरिए बहुत काम लेते हैं लोगों की इसलाह के लिए, तो इसलिए इसको कयास खताबी कहते हैं। क्या कहते हैं? कयास खताबी कहते हैं। कयास खताबी, याद रखो, ये मकबूलात और मजनूनात से मुरक्कब होता है। मकबूलात वो बातें जिनको कबूल कर लिया जाता है, मजनूनात वो बातें जो जन का फायदा देती हैं, यकीन का फायदा नहीं देती, तो ये इनसे मुरक्कब होता है। याद रखो मकबूलात, तवज्जो से भाई, मकबूलात वो कजिए हैं, वो बातें हैं जिनको किसी के बारे में हुस्ने जन यानी अच्छा गुमान रखने की वजह से कबूल कर लिया जाता है। जैसे आपको बुजुर्गों की बातें सुनाई जाती हैं, तकारीर में क्या करते हैं? वाइज हजरात बुजुर्गों की बातें सुनाते हैं। आपको एक बुजुर्ग पर एतमाद है, अकीदत है, मोहब्बत है, जब उसकी बात आपके सामने जिक्र की जाती है तो आप उसको कबूल कर लेते हैं। देखा, यह है मकबूलात। या इसी तरह किसी बड़े अकलमंद की बात आपके सामने जिक्र की जाती है तो फिर आप तहकीक वगैरह में नहीं पढ़ते, बस उसको कबूल कर लेते हैं। और इसमें दूसरी जानिब का भी ख्याल आता है कभी कि हो सकता है ऐसा ना हो, तो ये बातें जन का फायदा देती हैं। दूसरी जानिब का भी ख्याल आता है लेकिन जहन कबूल कर लेता है कि भाई इतने अकलमंद आदमी ने कहा या इतने बड़े अल्लाह के वली ने कहा है, यकीनन बात ऐसी ही होगी। तो यहां दूसरी जानिब का भी थोड़ा ख्याल आता है लेकिन बहरहाल जहन मुतमईन हो जाता है कि किसी बड़े अल्लाह वाले ने या किसी बड़े अकल वाले ने बात कही है। जैसे आजकल भी आप देखते हैं, आपको कोई डॉक्टर कोई मशवरा वगैरह देता है, आपको उसकी कोई तहकीक नहीं, लेकिन आप मान लेते हैं या नहीं मान लेते, और आप उसके मशवरे के मुताबिक फिर अमल करने की कोशिश करते हैं। अगरचे जहन में यह कभी आता है कि पता नहीं फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आपके नजदीक चूंकि वो अकल में आपसे ज्यादा है, इलम में आपसे ज्यादा है, इसलिए आप उसकी बात कबूल कर लेते हैं। और इसी तरह बुजुर्गों की बातें भी आप सोचते हैं कि ये तो अल्लाह का वली है, ये बड़े लोग हैं, आप उनकी बातें भी कबूल कर लेते हैं। तो ये है मकबूलात भाई। ये क्या हैं? तो मकबूलात वो बातें हैं जिनको हुस्ने जन की वजह से, अच्छे गुमान की वजह से कबूल कर लिया जाता है, किसी शख्स के इलम में ज्यादा होने की वजह से या अल्लाह का वली होने की वजह से उसकी बातों को कबूल कर लिया जाता है। और मजनूनात वो बातें जो जन का फायदा देती हैं, वो बातें जो जन का फायदा देती हैं। मसलन आपसे कोई कहता है कि भाई बादल आए हुए हैं, आज बारिश होगी, देखा आप इसको कबूल कर लेते कि हां। अगर जो जहन में आता है कि हो सकता है ना हो, थोड़ा सा ख्याल आ जाता है, लेकिन ज्यादा गुमान इसी तरफ जाता है कि भाई वाकई ये बादल आए हुए हैं, क्या होगी, बारिश होगी। या जैसे आपको कोई कहता है कि भाई जैद वो सारा दिन बाजारों में घूमता है और वो आवारा आदमी है, सुनने वाले कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं, अगरचे ये बात जन का फायदा दे रही है, यकीन का नहीं, क्योंकि हो सकता है भाई वो बाजारों में इसलिए घूमता हो, उसका कारोबार ही इस तरह का है कि सारा दिन उसको चीजें एक जगह से दूसरी जगह बाजारों में ले जाना पड़ती हैं। तो ये मजनूनात हैं भाई, ये क्या हैं, मजनूनात, जो वो बातें जो जन का फायदा देती हैं, यकीन का फायदा नहीं देती, और वो जो मकबूलात थे वो भी जन का फायदा देती हैं। तो सवाल पैदा हुआ, वो मकबूलात भी तो इसी मजनूनात के अंदर दाखिल हो गए, बुजुर्गों से या अकल वालों से बातें सुनी, वो भी तो क्या है, मजनूनात, उनका नाम आपने मकबूलात रखा और इनका नाम क्या रखा, मजनूनात, सिर्फ मजनूनात कह देते तो कहते हैं भाई उसमें चूंकि हुस्ने जन की वजह से कबूल किया जाता है, और यहां खुद अपनी अकल के गालिब गुमान होता है और वो इसके अंदर वाकई दाखिल हैं, लेकिन मजनून है आम, यूं कहें मजनूनात हैं आम और मकबूलात हैं खास। मकबूलात भी जन का फायदा देती हैं और मजनूनात भी जन का फायदा, लेकिन जब मजनूनात कह दिए इसमें सारी चीजें आ गई जो जो भी जन का फायदा देने वाली हैं, मकबूलात भी इसके अंदर दाखिल हो रहे थे, लेकिन जब मकबूलात इसके मुकाबले में अलग जिक्र किए गए तो मालूम हुआ मजनूनात से बाकी सारी जन्नी बातें मुराद हैं, मकबूलात मुराद नहीं। जैसे मसलन देखो, एक चीज की तरफ इशारा करके मैं आपको कहता हूं हाजा हैवानुन, और दूसरी की तरफ इशारा करके कहता हूं वजालिका इंसानुन, हाजा हैवानुन वजालिका इंसान। देखो इंसान, इंसान तो खुद भी तो हैवान के अंदर दाखिल है, तो हैवान हुआ आम और इंसान हुआ खास। याद रखो जब भी खास को आम के मुकाबले में जिक्र किया जाए तो वहां आम से इस खास के अलावा बाकी चीजें मुराद होती हैं। मालूम हुआ यहां जब मैंने हैवान को इंसान के मुकाबले में जिक्र किया तो इंसान को निकालकर बाकी हैवानात मुराद हैं, इंसान मुराद नहीं, क्योंकि इंसान इसके मुकाबले में आ रहा है। तो यहां पर भी मजनूनात में तो सारी जन्नी बातें दाखिल हो रही थीं, लेकिन ये मजनूनात किसके मुकाबले में है, मकबूलात। मालूम हुआ मकबूलात के अलावा बाकी आम जन्नी बातें इसमें दाखिल हैं, मकबूलात इसके अंदर दाखिल नहीं, उनको अलग शुमार करो। तो इसको कयास खताबी कहते हैं, चूंकि खतीब हजरात जो हैं वाज में खिताब में इससे बहुत ज्यादा काम लेते हैं, इसलिए इसको कयास खताबी कहते हैं, और इसका बहुत अजीम फायदा है, क्योंकि लोग एक दूसरे को वाज और नसीहत करते हैं, बुजुर्गों की बातें जिक्र करते हैं कि फलां बुजुर्ग ने इस तरह फरमाया है, और इन बातों की वजह से लोगों की दुनियावी जिंदगी में भी आसानी आती है और उनकी आखिरत भी संभलती है। भाई दुनिया के फायदों से मुतालिक बातें जिक्र की जाती हैं कि फलां अकलमंद आदमी ने यूं कहा है, इस तरह जिंदगी गुजारो, तो लोग उसकी बात पर अमल करते हैं और उनकी दुनिया बेहतर हो जाती है, और फलां बुजुर्गों ने कहा है यह अमल कर लो तो आपकी आखिरत बेहतर हो जाएगी, तो लोग उस पर अमल करते हैं उसको हुस्ने ज़न रखने की वजह से, और इस तरह उनकी आखिरत भी बेहतर हो जाती है। तो दुनिया का निजाम चलाने में और आखिरत की बेहतरी के लिए यह कयास खताबी से बहुत ज्यादा मदद ली जाती है। ये जितने खतीब हजरात मिंबर पर बैठकर तकारीर कर रहे होते हैं, यह सारे कयास खताबी चल रहे हैं भाई, जिसके जरिए वो लोगों को कायल करते हैं कि यह अमल करना चाहिए और यह अमल नहीं करना चाहिए, अच्छी बातों के करने का हुक्म देते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं भाई, इससे दुनिया भी संभलती है और आखिरत भी बेहतर होती चली जाती है। तो ये कयास खताबी है भाई, कयास खताबी। चुनांचे देखो लोग बुजुर्गों के और अकलमंदों के अकवाल को बाकायदा लिखते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, और फिर लोग इन पर अमल करते हैं और उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां हो जाती हैं। और फिर याद रखो ये जो कयास खताबी होते हैं इनको आवाम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनके जहन के मुताबिक होती हैं, आसान आसान बातें होती हैं, जबकि गहरी इल्मी बातों को तो वो समझ ही नहीं सकते, तो आवाम के सामने गहरी इल्मी बातें नहीं की जाती, उनके सामने ये कयास खताबी जिक्र किया जाता है भाई। बात समझ में आ गई, वो गहरी इल्मी बातें नहीं समझेंगे, उनके सामने अगर आप जो है वो मुवज्जहात को जिक्र करना शुरू कर दें तो कोई मुवज्जहा उनको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कह रहे हैं भाई। हां, बुजुर्गों की बातें जिक्र करें, आसान आसान बातें जिक्र करें जो जन का फायदा दें, उनको उनके जहन फौरन कबूल करते चले जाते हैं। तो ये इनसे खतीब वाइज हजरात बहुत मदद लेते हैं लोगों की दुनिया और आखरत संवारने के लिए। यह है कयास खताबी, और याद रखना इसको कयास इकनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कयास इकनाई या दलील इकनाई भी कहते हैं। इकना कनाअत से है, कनाअत। दलील इकनाई जिस पर कनाअत कर ली जाए, वो दलील जिस पर कनाअत यानी इक्तिफा कर लिया जाए, तो इस कयास खताबी को दलील इकनाई भी कहते हैं। या यूं कहो, ये दलील खताबी को दलील इकनाई भी कहते हैं, यानी लोग इस पर इक्तिफा कर लेते हैं, मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। और आप जानते हैं कनाअत हमेशा कम चीज पर की जाती है। आप कहते हैं फला आदमी बड़ा कनाअत पसंद है, क्या माना? यानी कम चीज पर ही वो राजी हो जाता है, कम चीज पर ही खुश हो जाता है। तो देखो ये भी जो कयास है ये जन का फायदा देता है, पूरे कामिल एतिकाद का और यकीन का फायदा नहीं देता, लेकिन इस पर ही लोग क्या कर लेते हैं? इक्तिफा कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दलील इकनाई कहते हैं। अब देखिए तर्जमा, वह इम्मा जदलियत अल्लफ मिनल मशहूराती वल मुसलमाती, या कियास जो है वो जदली होगा जो मुरक्कब होता है मशहूरात और मुसलमात से, यानी मशहूर और मुसलमा बातों से। वह इम्मा खताबी यूयत अल्लफ मिनल मकबूलाती वल मजनूनात, और यह कियास जो है वह खताबी होगा जो मुरक्कब होता है मकबूलात और मजनूनात से, यानी मकबूल और मजनून बातों से मुरक्कब होता है। व इम्मा शेरी यूयत अल्लफ मिनल मुखयलात, अगली किस्म आ गई भाई कियास शेरी। भाई कियास शेरी वो है जो ख्याली बातों से मुरक्कब हो, जो मुखयलात से मुरक्कब हो, जिससे लोग मुतासिर हों, और ये बातें नफ्स में कभी खुशी पैदा करती हैं, कभी गम पैदा करती हैं, तो कभी इनबिसात होता है, कभी इनकबाज होता है, चाहे ये सादिक हो या काजिब, मुमकिन हो या महाल हो। ये जो कयास शेरी है ये ख्याली बातों से मुरक्कब होता है, वो बातें सच्ची भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं, मुमकिन भी हो सकती हैं और नामुमकिन बातें भी हो सकती हैं। इसमें सारी ख्याली बातें आ गई, ख्याली बातें, जैसे शायर भाई ख्याली बातें करते हैं अपने अशआर में, और जितना ज्यादा बड़ा झूठ शायर बोलता है उतना ही लोग उसको पसंद करते हैं। अजीब गरीब ख्यालात जो मुमकिन ही नहीं होते भाई, तो लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, और इसका तबीयतों पर बड़ा असर होता है। आप भी देखते हैं कि कई कई तकरीरें मिलकर भी किसी इंसान पर इतना असर नहीं डालती जो बाज़ औकात एक शेर जो है इंसान पर असर डालता है भाई। एक शेर की वजह से इंसान की तबीयत में अजीब किस्म के नशात, सुरूर, खुशी महसूस करने लगता है। और कभी बाज अशार ऐसे होते हैं कि इंसान पर गम की कैफियत तारी हो जाती है, तबीयत में इनकबास आ जाता है। तो ये अशार का तबीयत पर बड़ा असर होता है। तो ये जो ख्याली बातों से जो कयास मुरक्कब हो उसको कयास शेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कयास शेरी। भाई इसमें अशार होना जरूरी नहीं, नाम से धोखे में ना पड़े कि शायद इसमें अशार होंगे, नहीं भाई। शेर का अपना मखसूस वजन होता है, जबकि आपको बताएंगे इल्म मंतिक के अंदर वजन शर्त नहीं है शेर के अंदर, बस ख्याल ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए। जो किसी के जहन में न आया हो तो उतना ही उसको लोग पसंद करेंगे भाई। नई से नई बात, अनोखी से अनोखी बात आप करें तो लोग उसको उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। और फिर कहते हैं इसके साथ अगर वजन भी आ जाए, क्या आ जाए? वजन भी आ जाए, बाकायदा शेर की सूरत भी इसको दे दें तो फिर इसका असर और बढ़ जाता है। और फिर अगर इसके साथ आवाज भी अच्छी आ जाए, अच्छी आवाज के साथ कोई उस शेर को पढ़े तो उसकी लज्जत कई गुना और उसका असर और तासीर कई गुना बढ़ जाती है। तो यह है कयास शेरी, और यह सच्ची बातें भी हो सकती हैं, झूठी बातें भी हो सकती हैं, मुमकिन भी हो सकती हैं और नामुमकिन भी हो सकती हैं। मसलन एक शायर था, उसके महबूब ने बनियान पहनी हुई थी और वो फटी हुई थी। वो बनियान क्या थी? फटी हुई। अब देखो बनियान फटी हुई हो कितनी बुरी मालूम होगी, लेकिन देखो वो उसको ऐसे लफ्जों में जिक्र करेगा कि वो और ज्यादा हसीन मालूम होने लगेगी, हसीन मालूम होने लगी। चुनांचे वो कहता है ला ताजबू मिन बिला गिला लती ही, शेर है शायर कहता है ला ताजबू मिन बिला गिला लती ही कद जुर्र अजरारुहू अलल कमर। याद रखो जो सूरज और चांद हैं, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है, देखो उसके जरिए जमीन वाले बेशुमार फायदे हासिल करते हैं, इसके जरिए दिन होता है, इसके जरिए हमारी फसलें तैयार होती हैं, इसके जरिए ये दरख्त जो हैं पौधे वगैरह बढ़ते हैं, और तो बहुत ज्यादा फायदे हैं सूरज के भाई। इसी तरह चांद है, चांद के भी बहुत से फायदे हैं। और याद रखो ये जो सूरज है ये समुद्रों की सतह पर भी असर डालता है, और जिस जानिब सूरज होता है उस तरफ समुंदर की सतह ऊंची हो जाती है। सूरज जो है अपनी तरफ खींचता है चीजों को, तो पानी चूंकि नरम है, सयाल है, लिहाजा वो थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है सूरज की तरफ। लेकिन सूरज दूर है, चांद बहुत करीब है जमीन के, तो चांद का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। चुनांचे चांद जो है पानी पर असरअंदाज होता है, और जिस तरफ चांद हो तो उस तरफ समुंदरों की सतह कई फुट ऊंची हो जाती है। चुनांचे साहिल के करीब रहने वाले लोग जिन दिनों में चांद उस तरफ हो तो वो पानी कई फुट ऊंचा हो जाता है, और साहिल का बड़ा दूर तक इलाका पानी में डूब जाता है, तो लोग बिल्कुल पानी के पास फिर घर नहीं बनाते भाई, क्योंकि वो हर महीने में पानी ऊपर उठेगा और वो उनके घरों के अंदर दाखिल हो जाएगा, वो डूब जाएंगे कई कई दिन तक भाई। तो ये इसको जवार भाटा कहते हैं, जवार भाटा, और समुद्रों में जवार भाटा होता है, और यानी पानी कभी ऊंचा होता है और कभी नीचे होता है, और इसकी वजह ये चांद और सूरज हैं, लेकिन सूरज का असर कम होता है और चांद का असर ज्यादा। और अगर सूरज और चांद दोनों एक तरफ हों तो फिर उसका असर और ज्यादा हो जाता है, दोनों पानी को खींच रहे हैं अपनी तरफ तो पानी कई फुट ऊंचा हो जाता है। तो ये चांद के असरात हैं जमीन पर। इसी तरह कहते हैं ये चांद जो है सूती कपड़े पर भी असर डालता है, जैसे धूप जो है, धूप के सामने अगर आपके कमरे में कोई तहरीर हो और वो दीवार पर आपने लगाई है और वो सुर्ख रंग वगैरह की है या रंग मुख्तलिफ किसी रंग की है और उस पर रोज धूप पड़ती है, आप देखेंगे कुछ अरसे बाद वो तहरीर का रंग फीका होना शुरू हो जाता है, ये धूप के असरात होते हैं। धूप आहिस्ता आहिस्ता वो रंग को उड़ाती है, खत्म करती है, सूरज के असरात हैं। इसी तरह ये जो चांद है ये सूती कपड़े को कहते हैं, जब सूती कपड़े पर चांद की रोशनी पड़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता गलता चला जाता है, बोसीदा होता चला जाता है, और जितनी ज्यादा चांद की रोशनी पड़ेगी उस पर उतनी ही जल्दी वो बोसीदा हो जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा। तो शायर कहता है, शायर के माशूक ने, महबूब ने, उसने फटी हुई बनियान पहनी हुई थी, तो शायर कहता है ला ताजबू मिन बिला गिला लती ही, बिला बोसीदा होना, गिलाला बनियान को कहते हैं, ला ताजबू मिन बिला गिला लती ही, ए लोगो मेरे माशूक की, मेरे महबूब की फटी हुई बुनियान पर हैरत का इजहार न करो, उस पर ताज्जुब न करो। कद जुर्रा अजरारुहू अलल कमर, जुर्रा का माने बटन बंद करना, और अजरार जमा है जिर रून की, बटन को कहते हैं। कद जुर्रा अजरारुहू अलल कमर, तहकीक उस बनियान के जो बटन हैं वो तो चांद के ऊपर बांधे गए हैं। किस पर? कहना यह चाहता है कि आप जानते हो कि सूती कपड़े पर जब चांद की रोशनी पड़े तो वो कपड़ा जल्दी बोसीदा हो जाता है और फट जाता है, और मेरा महबूब, मेरा महबूब तो खुद चांद है, तो जो बनियान पहनी हुई है वो उस पर चांद की सिर्फ रोशनी नहीं पड़ रही, वो चांद के साथ लगी हुई है, जब चांद के साथ लगी हुई है तो जाहिर सी बात है वो उतनी ही जल्दी बोसीदा होगी और फट जाएगी, इसलिए उसकी बनियान फटी हुई है, क्योंकि मेरा महबूब चांद की तरह हसीनो जमील है भाई। देखा, ये शायरों की बातें इस तरह की होती हैं। अब ये ख्याली बातें हैं भाई, और ये ख्याली बातें जहन में आती हैं, देखो इंसान को एक अजीब सा सुरूर महसूस होता है, कैसी अजीब बात इसने की भाई, तबीयत में इनबिसात आ जाता है। या जैसे जैसे कि इमरुल कैस कहता है, इमरुल कैस कहता है वकद अगतदी व तैरुफी वकुनातिहा बिमुंजरिदिन कैदिल अवाबिदी है कली मिकर्रिम मिफर्रिम मुकबिलिम मुदबिरिम मान कजुलमोदि सखरिन हत्तहुस्सैलुमिन अली। अपने घोड़े की तारीफ कर रहा है, कहते हैं मेरा घोड़ा बड़ा ताकतवर है, मैं सुबह सवेरे उस पर निकलता हूं, इतने सवेरे निकलता हूं अभी परिंदे भी अपने घोंसलों में होते हैं, यानी अंधेरे मुंह अंधेरे ही मैं निकल जाता हूं उस घोड़े पर। मिकर्रिम मिफर्रिम मुकबिलिम मुदबिरिम मान, मेरा घोड़ा अजीब है, कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे बढ़ता है और कभी पेशकदमी करता है, और यानी बैक वक्त वो कई हरकतें करता है भाई जंग के दौरान। और कजुलमुद सखरिन हत्ता हुसैलुमिन अली, ये बतलाना मैं चाहता था, देखो कजुलमुद वो इस तरह है, मेरा घोड़ा इतना हौलनाक है, जंग के मैदान में जब वो बढ़ता है आगे, दुश्मन जो सामने आता है उनके दिल दहल जाते हैं। कजुलमुद सखरिन, जैसे एक बड़ी सख्त चट्टान जो है, हत्ता हुसैलुमिन अली, जैसे उसको ऊपर से पानी ने लुढ़का दिया हो, पहाड़ पर बारिश वगैरह हुई, पानी आया और उस पानी की वजह से ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आता है। आपने चूंकि ये कभी मंजर देखा नहीं, आपको इसकी हौलनाकी का अंदाजा नहीं है भाई। आप नीचे खड़े हो और पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है भाई, एक कमरे जितना है या कमरे से भी बड़ा है, और वो उछलता उछलता और इतनी रफ्तार से आता है, देखने वालों के दिल दहल जाते हैं भाई। जो सामने चीज आए उसको मलिया मेट कर देता है, खत्म कर देता है, चाहे मकान हो चाहे इंसान हो चाहे हैवान हो, उनको बिल्कुल कुचलता हुआ निकल जाता है भाई। और इस तरह उछलता हुआ आता है इंसान, एक बिल्कुल आप नीचे खड़े हैं वो ऊपर से आ रहा है, आप दाएं तरफ दो कदम बढ़ाएंगे आपको लगेगा ये तो शायद इधर को आ रहा है, आप दूसरी तरफ को कदम बढ़ाएंगे आपको लगेगा दूसरी तरफ को आ रहा है, इंसान को समझ ही नहीं आती कि जान किस तरफ निकाले भाई। तो यह एक अजीब हौलनाक मंजर होता है। तो इमराउल कैस कहता है मेरा घोड़ा भी ऐसा ही है, कजुलमुद सखरिन हत्ता हुसैलु मिन अली, जैसे एक बड़ी सख्त चट्टान हो जिसको ऊपर से सैलाब ने लुढ़का दिया हो, जैसे वो चट्टान ऊपर से आती है और नीचे सामने वाले लोगों के दिल दहल जाते हैं, मेरा घोड़ा जब मैदान जंग में बढ़ता है तो सामने वालों के दिल इस तरह दहल जाते हैं। देखो अजीब तशबी बयान की, इंसान हैरान रह जाता है। ये तशबीहात हैं, अरब अजीब तशबीहात देते हैं, और फिर सहाबा, सहाबा की तो अजीब ही तशबीहात हैं। एक सहाबी की तशबीह सुने भाई, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में जिंदगी के थे, बीमार थे, कभी मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं कभी नहीं ला रहे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने, बहुत बीमार थे, अब घर का पर्दा उठाया मस्जिद की तरफ झांका, लेकिन फिर बीमारी की वजह से हिम्मत नहीं हो सकी, तशरीफ नहीं ला सके। तो सहाबी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा उठाया और आपका चेहरा मुबारक जाहिर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक इस तरह चमक रहा था जैसे कुरान का वर्क होता है भाई। अजीब तशबीह दी, कितनी मुबारक और प्यारी तशबीह दी भाई। और जैसे वो सहाबी जिक्र करते हैं कि मैंने 14वीं रात के चांद निकला हुआ था और हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे सामने थे, मैं कभी चांद को देखता था कभी हुजूर को देखता था कि कौन ज्यादा हसीन है, आखिर मेरे दिल ने कहा कि भाई हुजूर बहुत ज्यादा हसीन है भाई, ये चांद क्या चीज है भाई। तो ये तशबीहात भाई, ये देखो दिल में एक अजीब कैफियत और लज्जत पैदा करती है भाई। या जैसे एक शायर कहता है, शायर कहता है कि मेरा महबूब बड़ा नर्मो नाजुक है और नर्मो नाजुक चीज नर्मो नाजुक चीज के पास ही रहना पसंद करती है। तो मेरा महबूब जो है वो फूल के पास सोया हुआ था, फूल भी नाजुक है मेरा महबूब भी नाजुक था। यारे मन अज नाजुकी जेरे गुल खाबीदा बवत, यारे मन अज नाजुकी जेरे गुल खाबीदा बवत, मेरा महबूब जो है नजाकत की वजह से फूल के नीचे लेटा हुआ था, सो रहा था। गुल मबादा बेश गुफत अस्वाबश बेदार कुनत, लेकिन मेरा महबूब इतना नाजुक है, इतना नाजुक है, मुझे खौफ है कहीं फूल के खिलने की आवाज सुनकर वो जाग ना जाए भाई। अंदाजा लगाइए भाई, यानी फूल के खिलने की जिसकी आवाज ही कोई नहीं होती वो कहता है कि कहीं मेरा महबूब तो इतना नाजुक है कहीं फूल खिलने की आवाज सुनकर जाग ही ना जाए। या जैसे शायर, एक शायर अपने महबूब की तारीफ करता है भाई, याद रखो ये जो पतली कमर होना ये हुस्न और जमाल की अलामत है, ये नहीं कि पेट बड़ा हुआ हो और खूब निकला हुआ हो, नहीं नहीं, पतली कमर हुस्न और जमाल की अलामत है। तो अब एक शायर अपने महबूब की पतली कमर की तारीफ कर रहा है, अजीब अल्फाज है, इंसान सुनता है हैरान रह जाता है। शायर कहता है, सनम सुना है तेरी भी कमर है, सनम महबूब, महबूब सनम सुना है तेरी भी कमर है, कहां है, किधर है, किस तरफ है। यानी इतनी पतली कमर है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि इसकी भी कमर है। भाई देखो अजीब सी एक बात है, सनम सुना है तेरी भी कमर है, कहां है, किधर है, किस तरफ है। भाई तो ये जो ख्याली बातें हैं, देखो दिलों में खुशी की एक कैफियत कभी पैदा हो जाती है, कभी कोई गम की बात आएगी तो गम की कैफियत दिल में पैदा हो जाएगी, तो कभी इनकबाज होगा, कभी इनबिसात होगा। ये सब ख्याली बातें हैं, ये सब क्या हैं, ख्याली बातें हैं। ये कयास शेरी, इनको क्या कहते हैं, कयास शेरी कहते हैं। तो कहते हैं, वह इम्मा शेरी यूं यतअल्लफ मिनल मुखयलाती, और या कयास जो है वो शेरी होगा जो मुरक्कब होता है मुखयलात से, यानी ख्याली बातों से। मैंने बताया ये सच्ची भी हो सकती हैं और झूठी भी, मुमकिन भी हो सकती हैं और नामुमकिन भी। हुआ इम्मा सफसती यूं यतअल्लफ मिनल वहमियाति वल मुशब्बहात। पांचवी किस्म आ गई भाई सनाआत खमसा में से, कयास सफसती। कयास सफसती याद रखो वहमियात और मुशब्बहात से मुरक्कब होता है, वहमियात और मुशब्बहात से। वहमियात वो वहमी मुकदमे जिनको कुव्वत वाहिमा घड़ लेती है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और कुव्वत वाहिमा ये याद रखो, कुव्वत वाहिमा जो अभी मैंने जिक्र की, जो मानिए जुजिया का इदराक करती है, ये कुव्वत जो है ये इंसान पर इसका बड़ा गलबा होता है, बड़ा गलबा होता है। और ये बाज़ औकात झूठी चीज को सच्ची बनाकर पेश कर देती है। मसलन आपके जहन में सांप का भी तसव्वुर है, सांप को आप जानते हैं, देखा हुआ है, और आपके जहन में आप रस्सी को भी जानते हैं। कभी कभी आप चल रहे होते हैं, रास्ते में रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा होता है, आप एकदम उससे डर जाते हैं। यह किसने किया, यह कुव्वत वाहिमा ने, कुव्वत वाहिमा ने उस रस्सी की सूरत उठाई और दूसरी तरफ से सांप की सूरत उठाई और उन दोनों को जोड़कर आपके सामने पेश कर दिया कि यह तो शायद सांप है भाई, आप एकदम उससे डर जाते हैं। और इसका फायदा भी होता है भाई, कई दफा इंसान एहतियात की वजह से फिर बच भी जाता है भाई। और याद रखना ये जो कुव्वत वाहिमा होती है, कुव्वत वाहिमा इसका नफ्स पर बड़ा गलबा होता है, हत्ता के ये अकल पर भी गालिब आ जाती है। ये कुव्वत वाहिमा ऐसी है भाई, कुव्वत वाहिमा। चुनाचे आप भी देखते हैं किसी जगह पर जिंदा ही अफराद बैठे हों, आपको वहां बैठते हुए जरा भी खौफ नहीं आता, लेकिन किसी घर के अंदर अगर मैयत पड़ी हुई हो और आपको वहां अकेले बैठना पड़ जाए तो खौफ महसूस होने लगता है। हालांकि भाई ये तो मुर्दा है, डरना तो जिंदा से चाहिए, ये बेचारा तो हिल भी नहीं सकता, लेकिन कुव्वत वहमा क्या करती है, इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती है। या और मिसाल ले लें भाई, देखिए जमीन पर एक दो फुट चौड़ी लकड़ी पड़ी है और 50 फुट लंबी है, 2 फुट चौड़ी 50 फुट लंबी जमीन पर पड़ी है, आपको कहें कि यहां से वहां तक इस पर चलो, आप बड़े इत्मीनान से उस पर चलते हैं, कोई गिरने का खतरा है, कोई डोलते हुए इधर उधर जाते हैं नहीं, बड़े आराम से जमीन पर पड़ी है, आराम से चले जाते हैं। लेकिन इसी लकड़ी को 2 बिल्डिंगों के दरमियान ऊपर छत पर लगा दें, अब आपको कहें यहां से वहां तक जाना है तो हर एक इनकार करेगा, नहीं मैं जाता ही नहीं भाई, ये वही लकड़ी है जिस पर आप बड़े इत्मीनान से जा रहे थे। नहीं, कुव्वत वहमा अब आपको खौफ में मुब्तला कर देती है कि गिर ना जाए। और अगर अव्वल तो कोई जाएगा ही नहीं, और अगर कोई जाएगा भी तो आप देखेंगे बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, ये कभी एक तरफ डोलता है कभी दूसरी तरफ डोलता है, ये कौन करती है, कुव्वत वहमा करती है। तो इसका नफ्स पर बड़ा गलबा होता है, हत्ता के बाज लोगों को आप देखते हैं कि वो वहम की बीमारी हो जाती है भाई उनको। मसलन वो वजू कर रहे हैं, उन्होंने अपना चेहरा धोया या हाथ धोए, फिर वहम कहते हैं नहीं भाई हाथ अच्छी तरह नहीं धुले, वो फिर उनको धोता है,
फिर वो अगले उज़्व की तरफ पांव धोने लगता है, फिर ख्याल आता है नहीं भाई हाथ अच्छी तरह नहीं धोए, तो वो 15-15, 20-20 मरतबा एक उज़्व को धोता चला जाता है। तो ये कुव्वते वाहमा है जो ये उससे काम करवा रही है, जो उस पर हद से ज्यादा गालिब आ गई है। तो ये कुव्वते वाहमा इंसान को वहम में मुबतला करती है, लेकिन फिर आगे जब शरीयत की रहनुमाई आती है और अकल की मदद होती है तो फिर इन वहमों से इंसान बच जाता है। तो ये है वहमियात भाई। तो ये जो कयासे सफसती जो है ये इन वहमियात वहमी बातों से और मुशब्बहात से मुरक्कब होता है। वहमियात और मुशब्बहात से, वहमियात वो झूठे कजिए जिनको हमारी कुव्वते वाहमा घड़ लेती है और गैर महसूस को महसूस के दर्जे में उतारकर हमारे सामने पेश कर देती है। यूं कहें कि गैर महसूस पर महसूस वाला हुक्म लगा देती है, गैर महसूस पर, यहां वो महसूस नहीं मुराद जो पीछे जिक्र हुआ था, मैंने कल आपको बताया था, एक महसूस वो है जो हवासे खमसा जाहिरा के जरिए जो कुछ हमें मालूम हो, जो आवाज सुनते हैं वो भी महसूस, जो चीज देखते हैं वो भी महसूस, जो चखते हैं वो भी महसूस, जो सूंघते हैं वो भी महसूस, और जिसे छूते हैं वो भी महसूस, इन सबको भी महसूसात कहते हैं। लेकिन उर्फ में महसूस उस चीज को कहते हैं जो आंखों से नजर आए, आम लोगों को जो आंखों से दिखाई दे कहते हैं ये महसूस है, और जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं कि ये गैर महसूस है। तो वो आवाज को गैर महसूस कहते हैं, जायके को गैर महसूस कहते हैं, खुशबू या बदबू को गैर महसूस कहते हैं। तो यहां जो महसूस का लफ्ज मैं जिक्र कर रहा हूं कि ये जो कुव्वत वाहिमा है गैर महसूस को किसकी सूरत में पेश कर देती है, महसूस की सूरत में पेश कर देती है। यहां से मुराद है जो आंखों से दिखाई दे, महसूस से मुराद वो है जो तो ये कुव्वत वाहिमा एक चीज जो गैर महसूस है आंखों से दिखाई नहीं देती उसको किस सूरत में बनाकर पेश कर देती है, महसूस की सूरत में पेश कर देती है। तो यह है वहमियात जो कुव्वत वाहिमा झूठे कजिए अपनी तरफ से घड़ लेती है। और दूसरी किस्म है मुशब्बहात। मुशब्बहात वो कजिए हैं जो सच्चे कजियों के मुशाबे होते हैं, सच्चे तो नहीं है लेकिन सच्चों के मुशाबे हैं। इंसान समझता है शायद ये सच्चे हैं क्योंकि उनकी मुशाबहत होती है सच्चे कजियों के साथ, या सूरत के एतबार से मुशाबहत होती है या माना के एतबार से मुशाबहत होती है। मसलन देखो दीवार पर एक तस्वीर लगी है घोड़े की, आप कहते हैं यह घोड़ा है, और जो घोड़ा होता है वो हिनहिनाता है, मालूम हुआ ये भी हिनहिनाता है। देखा कयास क्या बनाया, ये घोड़ा है, इशारा किसकी तरफ, घोड़े की तस्वीर की तरफ, और आगे दूसरा कजिया मिलाया कुबरा, और जो घोड़ा होता है वो हिनहिनाता है, नतीजा क्या निकला, ये घोड़ा हिनहिनाता है। तो ये सूरतन लगता है कि शायद ये कयास सच्चा है, लेकिन ये सच्चा नहीं है भाई, क्योंकि क्योंकि हद औसत दोनों जगह एक होना चाहिए, हालांकि यहां अलग है। पहला जुमला जो कहा सुगरा, ये घोड़ा है, इसमें जो घोड़ा जिक्र है इसमें हकीकी घोड़ा जिक्र है या उसकी तस्वीर मुराद है, उसकी तस्वीर, और आगे जो हुक्म लगाया हर घोड़ा हिनहिनाता है उससे कौन सा घोड़ा मुराद है, उससे हकीकी घोड़ा मुराद है। तो यहां पर हद औसत एक चीज नहीं है, सुगरा के अंदर जो महमूल जिक्र है वो और चीज है, और कुबरा के अंदर जो मौजू जिक्र है वो और है भाई। सुगरा में जो घोड़ा जिक्र है वो और है, कुबरा में जो घोड़ा जिक्र है वो और है भाई। लेकिन देखो ये लफ्जों में मुशाबहत थी, वो जो हकीकत में घोड़ा होता है उसको भी घोड़ा कहते हैं, जो तस्वीर हो उसकी उसको भी क्या कहते हैं, ये घोड़ा है। तो यहां देखो यहां सूरत में मुशाबहत आ गई, इसकी वजह से यह गलती लग गई भाई, बात समझ में आ गई। तो यह है कयास सफसती भाई, जो किससे मुरक्कब हो, वहमियात से, वो झूठे कजिए जिनको हमारा जहन घड़ लेता है, और इसी तरह वो मुशब्बहात वो झूठे कजिए जो सच्चे कजियों के मुशाबे होते हैं। और याद रखो ये कयास सफसती ये सूफ और इस्ता से माखूज है। सूफ का माना है हिकमत, यूनानी जुबान में सूफ का क्या माना, हिकमत, दानाई भाई, फलसफा, और इस्ता का माना है मुलम्मा बई, धोखे वाली, मुमव्वह बई, मुमव्वह वो चीज जिस पर सोने वगैरह या चांदी का पानी चढ़ा दिया जाए। अब वो सोने जैसी दिखाई देगी लेकिन अंदर से वो सोना है नहीं। इसी तरह या चांदी का पानी चढ़ा दिया, अब देखने में वो चांदी की तरह चमकदार लेकिन अंदर चांदी नहीं है। तो जैसे ये मुमवह चीज जो है, यानी ये मुलम्मा की हुई जिस पर सोने या चांदी का पानी चढ़ा दिया गया, जैसे ये चीज जो है देखने में कुछ और अंदर से कुछ है, इसी तरह ये जो कियास सफसती है ये देखने में कुछ है हकीकत में कुछ है, यानी ये धोखे वाली हिकमत है। सूफ इस्ता, सूफ का क्या माना हिकमत और इस्ता का माना मुलम्मा की हुई यानी धोखे वाली, धोखे वाली। तो सूफा इस्ता, सूफा इस्ता धोखे वाली हिकमत, धोखे वाला कियास, धोखे वाला धोखे वाला कियास, बात समझ में आ रही है। और उसी से फिर ये सूफा इस्ता से अखज करते हुए बाबे दहराजा बना लिया गया, सफ सता युसफ सितु सफ सता तान, बात समझ में आ रही है। तो इसी से बाबे दहराजा बना लिया गया, तो ये कियास सफसती है भाई। और कियास सफसती चूंकि आम लोगों को धोखे में डालता है और गलती में मुबतला करता है, इसलिए इसे कियास सफसता और कियास मुगालता भी कहते हैं। कियास सफसती जो है इसके जरिए चूंकि आम लोगों को धोखे में डाला जाता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कियास सफसती भाई। और इसी तरह इसे कियास मुगालता भी कहते हैं, कियास सफसती भी कहते हैं और कियास मुगालता भी कहते हैं, इसका आम नाम कियास मुगालता है। यह कियास सफसती जो है अगर इसे किसी हकीम के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाए, किसी से बहस मुबहसे के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको रद्द करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए, तो इसको कियास सफसती कहते हैं, यानी धोखे वाला कियास। क्या कहते हैं? धोखे वाला। और अगर आम लोगों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसको मुशागबा कहते हैं। शागबा युशागिबु, मुशागबा का माना है बहस मुबहसा करना, बहस यानी इस आदमी को मुशागबी कहेंगे कि ये वैसे ही लोगों से बहस मुबहसे करने वाला है, यानी शोर डालने वाला है, शोर करने वाला है। तो कियास सफसती को अगर किसी हकीम के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाएगा उसके मुकाबले में, तो इसको क्या कहेंगे, कियास सफसती, कि ये धोखे वाला कियास है भाई, सही दलाइल नहीं दे रहे, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आम लोगों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम लोगों के अंदर इसको जो इस्तेमाल करे उसको क्या कहते हैं, मुशागबी कहते हैं। और यह कियास उसका मुशागबा कहलाता है, यानी यह आदमी वैसे ही हर जगह जहां जाता है लोगों से बहस मुबहसा शुरू कर देता है, तो इसको मुशागबी कहते हैं भाई। तो इसका अपना फायदा कोई नहीं है, कियास सफसती का बिज़ात कोई फायदा नहीं कि आप इसको दलाइल के मैदान में पेश करके अपनी बात साबित कर सके, नहीं भाई, ये तो धोखा होता है, जो जानने वाले होते हैं फौरन इसको समझ लेते हैं, तो इसके ये बिज़ात आपको कोई फायदा नहीं देगा, आप इसके जरिए अपना दावा साबित नहीं कर सकते, दूसरे से तस्लीम नहीं करवा सकते। हां बिल आरज इसका फायदा है कि अगर आपको इसका पता होगा तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता कियास सफसती के जरिए, आपके सामने जो भी कोई कियास सफसती पेश करेगा आप फौरन उसकी गलती पकड़ लेंगे कि आप ये धोखा दे रहे हैं। जैसे वो कियास था कि ये घोड़ा है और हर घोड़ा हिनहिनाता है, मालूम हुआ ये तस्वीर वाला घोड़ा भी हिनहिनाता है, तो देखो ये कियास सफसती है भाई। तो इसके जरिए जब आप जानते होंगे आप इसको फौरन गलती को पकड़ लेंगे और जान जाएंगे कि यह शख्स धोखा देने की कोशिश कर रहा है भाई। और फिर एक और कीमती बात याद रखना, एक और कीमती बात याद रखना कि ये जो सनाआत खमसा आपने पढ़ी, पांच किस्में कियास की, बुरहानी, जदली, खताबी, शेरी और सफसती, इनमें से जो कियास बुरहानी है उसके दोनों मुकदमों का यकीनी होना जरूरी, और यकीनियात छह हैं इन्होंने आपको बतला दिए, बदीहियात कितने हैं, छह। तो कियास बुरहानी के दोनों मुकदमात का बदीही होना, यकीनी होना जरूरी है, जबकि बाकी जो कियासात हैं उनके दोनों मुकदमात उसी किस्म में से हों जो इनके साथ जिक्र किए गए। जैसे कियास जदली में कौन से मुकदमात होते हैं, मशहूरात और मुसलमात, खताबी में कौन से होते हैं, मकबूलात और मजनूनात, कियास शायरी में कौन से होते हैं, मुखयलात होते हैं, और कियास सफसती में क्या होते हैं, वहमियात और मशमुशबहात। तो इनमें दोनों किस्में, दोनों मुकदमे इसी किस्म के होना जरूरी नहीं। आपने कियास जदली पेश किया, दोनों मशहूरा या दोनों मुसलमा या एक मशहूरा एक मुसलमा, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें यकीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एक मुकदमा यकीनिया ले आए कहां से, वो अव्वलियात वगैरह में से, और एक आपने मशहूरात या मुसलमात में से मिला लिया। तवज्जो है, तो याद रखना कयास बुरहानी में दोनों मुकदमे यकीनियात से होना जरूरी, और बाकी के अंदर जो जो किस्में कजाया की इनके साथ जिक्र हुई वही होना जरूरी नहीं। हां उनमें से एक हो सकता है, एक वो हो सकता है दोनों ही वो हो सकता है एक यकीनी हो और एक वो हो गई, एक वही किस्म जो उसके साथ जिक्र हुई। और जब कयास के अंदर दो किस्म के मुकदमे आ जाएं, मसलन एक यकीनियात में से है और एक मशहूरात में से है, तो जो अदना मुकदमा है उसका एतबार किया जाएगा। और मुझे बताइए यकीनी मुकदमा अदना है या मशहूर जो मुकदमा है वो अदना है? मशहूर जो है यकीनन उसका दर्जा यकीनी तो यकीनी है, उसमें तो किसी किस्म का शक और शुबा नहीं, और मशहूर बातें वो तो सच्ची भी हो सकती हैं झूठी भी हो सकती हैं। तो एक मुकदमा है यकीनी और एक क्या है मशहूर, एक मशहूरा मुकदमा एक मशहूर मुकदमा है, तो अदना कौन सा? मशहूर। लिहाजा मशहूर का एतबार किया जाएगा और इस कयास को बुरहानी नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? जदली कहेंगे। हालांकि एक मुकदमा तो यकीनी है लेकिन अदना का एतबार करेंगे। इसी तरह एक कयास के अंदर आप एक मुकदमा मशहूरा है और एक मकबूला है, मकबूलात में से है, तो किसका एतबार करेंगे? मकबूलात का। लिहाजा इसको कयास जदली नहीं कहेंगे बल्कि कयास खताबी कहेंगे। इसी तरह एक कयास है उसके अंदर एक मुकदमा यकीनी है और एक मुकदमा जो है वो तखयील है ख्याली बात है, तो किसका एतबार करेंगे? ख्याली बात का। लिहाजा इसको क्या कहेंगे? कयास शेरी कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो कयास के अंदर जो दो मुकदमात हैं वो सिर्फ बुरहानी, कयास बुरहानी में दोनों यकीनी होना जरूरी, बाकियों के अंदर कोई भी मुकदमा एक किसी एक किस्म का ले लिया दूसरा दूसरी किस्म का ले लिया, अलबत्ता जो उनमें से अदना होगा उसका एतबार करेंगे और उसका नाम इसको दे देंगे भाई। और इनमें सबसे आला दर्जा कयास बुरहानी का है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो दर्जा है वो कयास जदली का है, जिस तरतीब से इन्होंने जिक्र किए वही दर्जा है, और तीसरा दर्जा कयास खताबी का है, चौथा दर्जा कयास शायरी का है, उसमें ख्याली बातें हैं, और कयास सफसती का सबसे आखिरी दर्जा है क्योंकि वो तो धोखे वाली बातों पर मुश्तमिल है भाई। तो ये है सनाअत खमसा भाई, और इसमें खूब महारत इंसान को हो ताकि फौरन पता चल जाए ये किस किस्म का कयास है, खुसूसन जो मुनाजरे वाले हैं वो इस कयास जदली से मदद लेते हैं भाई, अपनी बात को साबित करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम ये कि हमने कयास की सनाअत खमसा भी पढ़ ली कि कयास पांच किस्म पर है, या कयास बुरहानी होगा, या कयास जदली होगा, या कयास खताबी होगा, या कयास शेरी होगा, और या कयास सफसती। कयास बुरहानी जो है उसका दर्जा सबसे आला, वो यकीनियात से मुरक्कब होता है, और उसूल यकीनियात जो हैं वो छह किस्म के हैं, यानी बदीहियात छह किस्म पर हैं, या अव्वलियात हैं, या मुशाहदात हैं, या तजरीबियात हैं, या हदसियात हैं, या मुतवातिरात हैं, या फितरियात हैं। और मैंने बताया था आपको कि इनमें से जो अव्वलियात हैं इनमें किसी वास्ते की जरूरत नहीं, वास्ते के बगैर ही जहन इनको कबूल कर लेता है और मान लेता है, जबकि बाकी बदीहियात की जो पांच किस्में हैं उनमें सब में कोई ना कोई वास्ता है। मुशाहदात में हिस्से जाहिर या हिस्से बातिन जो है वो वास्ता है, और तजरीबियात में तजर्बा वास्ता है, और हदसियात में हदस वास्ता है, मुतवातिरात में तवातुर वास्ता है, और फितरियात में साथ उसका कयास या दलील साथ आती है लेकिन वो चूंकि जुदा नहीं होती इसलिए इसको इन सब को बदीहियात में शुमार करते हैं। और फिर जो कयास जदली है वो मशहूरात और मुसलमात से मुरक्कब होता है। मशहूरात वो मुकजिये जो मुख्तलिफ इलाके वालों में या पूरी दुनिया वालों में मशहूर हों, वो सच्चे भी हो सकते हैं झूठे भी हो सकते हैं, और मुसलमात वो हैं जो उनको फरीक मुखालिफ तस्लीम करता है, वो भी सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं लेकिन वो उनको तस्लीम करता है, ये है मुसलमात। या किसी और इलम में क्या है साबित हैं और यहां पर उनको दोबारा साबित करने की जरूरत नहीं है, उसको उसी तरह इस्तेमाल कर लिया, एक मुसलमा कजिया है साबित शुदा है भाई। और जबकि कयास खताबी वो मकबूलात और मजमूनात से मुरक्कब होता है। मकबूलात वो बातें जो तस्लीम कर ली जाएं हुस्ने जन की वजह से, किसी के बारे में अच्छा गुमान करते हुए, जैसे बुजुर्गों की बातें हैं या जैसे अकलमंद लोगों की बातें हैं। और मजनूनात वो बातें जो जन का फायदा दें, और ये आम है, ये सबको शामिल है, लेकिन यहां पर यह मकबूलात के अलावा बाकी मजनूनात मुराद हैं। तो मकबूलात भी जन का फायदा देते हैं और मजनूनात भी जन का फायदा देते हैं। और अगली किस्म है कयास शायरी, और वह मुखयलात से मुरक्कब होता है। मुखयलात ख्याली बातें जो जहन में आती हैं, जो जहन पर असरअंदाज होती हैं, कभी खुशी देती हैं, कभी गम देती हैं, कभी इनबिसात पैदा होता है, कभी इनकबास पैदा होता है, कभी इसकी वजह से कोई चीज अच्छी लगने लगती है, कभी कोई चीज बुरी लगने लगती है, कभी बहुत ही बुरी चीज है लेकिन शायर ऐसे लफ्जों में जिक्र करेगा आपको भी अच्छी लगने लगेगी, कभी बड़ी ही अच्छी चीज होती है शायर ऐसे लफ्जों में जिक्र करेगा कि आपको भी बुरी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये कयास शायरी है। और आखिरी किस्म कयास सफसती है, और कयास सफसती ये जो है धोखे की हिकमत है, जिसके अंदर वहमियात यानी वो कजिए जिनको कुव्वत वाहिमा घड़ लेती है और गैर महसूस को किसका हुक्म दे देती है, महसूस वाला हुक्म दे देती है, या ऐसे कजिए मुशब्बहात यानी वो कजिए जो है तो झूठे लेकिन मुशाबे किसके हैं, सच्चे कजियों के, उनको उनसे यह मुरक्कब होता है। तो यह है सनाआत खमसा। भाई बात अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।